بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما فرغ قال إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال الحميدي هذا الحديث منسوخ. قال أبو عبد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس داخل ہوئے. دخل علیہ ناسن کہ لوگ آپ کے پاس داخل ہوئے. یعودونہ فی مرضہ اور وہ آپ کی عیادت کر رہے تھے آپ کے مرض وفات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھائی. فجعلوا یصلون قیاما وہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. فأشار إليهم أن اجلسوا اللہ کے نبی نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. فلما فرغ پھر جب نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا ان الامام لیؤتم به بے شک امام اس لیے ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. فإذا ركع فركعوا جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. وإذا رفع فرفعوا اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نماز جو پڑھائی تو بیٹھ کر پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے جو بات ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی عیادت کے لیے ہم جائیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ایسے موقع پر مریض اگر سب کو جماعت کا اہتمام کروا دے تو بڑی اچھی بات ہے, جماعت کے ساتھ سب کی نماز ادا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں صحابہ یہ لوگ آ رہے تھے عیادت کرنے کے لیے, درمیان میں نماز کا وقت ہوا تو حضور نے سب کو نماز پڑھا دیا, سب نے نماز پڑھی. دو باتیں اور یہاں اس حدیث کے تحت میں ذہن میں رکھنے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھی, تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے. صحیح, اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں نماز میں قیام فرض ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. بغیر عذر کی وجہ سے اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی. مشقت ہے, تکلیف ہے, ہلکی ہے تو اس کو برداشت کرنے کا حکم ہے. قیام پر قادر اگر ہے, تھوڑی سی مشقت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ قیام کر سکتا ہے تو اس کا قیام ساقط نہیں ہوگا. تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے ہوگا, کھڑے ہو کر قیام کرے گا, پھر رکوع سجدہ کرے گا. اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں بہتر صورت یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہو تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے, کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں. یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. اور اس میں زمین پر جب بیٹھے گا تو رکوع اور سجدہ کرے گا بیٹھ کر, اور اس کی استطاعت ہے تو ضرور جو ہے رکوع سجدہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے کی مشقت اس کو ہے تو پھر ایسی صورت میں کھڑے یعنی کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی اس کو گنجائش ہے. تیسرا درجہ اور آخر درجہ ہے وہ کہ سب سے آخر میں کرسی پر آئے. بعض دفعہ مریض اتنا شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے نہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, گھر میں ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ نہ کھڑے ہونے کی ہمت ہے نہ بیٹھنے کی ہمت ہے, تو شریعت کا آخری درجہ یہ ہے کہ لیٹ کر نماز پڑھنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے اس کو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو قبلہ ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف مریض کا رخ کر دیا جائے, قبلے کی طرف پاؤں کر دیا جائے, اور اس حالت میں پاؤں اگر ہوں تو کوئی بے ادبی نہیں ہے, بالکل پاؤں قبلے کی طرف کر دی. اگر کھڑے کر سکتا ہو تو پاؤں کھڑے کر لے, کھڑے نہیں کر سکتا ہو تو پاؤں سیدھے کر لے قبلے کی طرف میں, اور پیچھے سے جو ہے تھوڑا سا اس کا سرانہ جو ہے نا اٹھا دیا جائے. جو بیڈ اٹھاتے ہیں ہاسپٹل میں عام طور پر تھوڑا سا پیچھے سے اٹھا دیں تو قبلے کی طرف رخ ہو جائے گا, تو اس کی گنجائش ہے. اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے, لیٹے لیٹے سر کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے, تھوڑا سا ہلکا بھی سر اٹھا دے تو پھر ہلکے اشارے سے سر کے اشارے سے رکوع کے لیے تھوڑا سا اشارہ کرے گا, سجدے کے لیے اور تھوڑا سا اشارہ کرے گا. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی حال میں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں فرمائی ہے. کہ آدمی کے لیے اگر گنجائش نہیں بن رہی ہے تو سر کے اشارے سے تک अल्लाह तबारक व ताला ने गुंजाइश दी है कि नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। हत्ता कि मैदान जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को तर्क नहीं किया। जिस वक्त को काफिर थे सामने लड़ने के लिए मौजूद हैं, जंग चल रही है, और जाहिर सी बात है कि जंग की सूरत हाल मामूली सूरत हाल नहीं होती, नेज़े तलवारें बरस रही हैं, दुश्मनों की तरफ से हमला हो रहा है। शरीयत का हुक्म यह है कि उस वक्त भी नमाज़ पढ़ी जाए, और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरतीब बताई है कि भाई दो ग्रुप कर लिए जाएँ, उसमें दो जमातें बना ली जाएँ। एक जमात दो रकत नमाज़ पढ़ेगी चली जाएगी, और दूसरी जमात आएगी वो दो रकत नमाज़ अदा करेगी, और फिर वो जमात आएगी जो पहले गई है वो आकर अपनी दो रकातों को मुकम्मल कर लेगी, फिर ये जाएगी तो फिर दूसरी जमात आएगी वो आकर जो है अपनी रकातों को मुकम्मल कर लेगी, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। ये तरीका बयान किया गया है, तो बहरहाल इसका अहतमाम करना चाहिए। कुर्सियों के सिलसिले में ख़ास तौर पर बड़ी कोताही होती है, लोगों को मसाइल मालूम नहीं होते हैं तो हल्के छोटे से मर्ज़ में जो है उठते हैं, सीधा कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ शुरू कर दी। बाज़ अमराज ऐसे होते हैं कि हम अपने आप को मरीज़ समझ रहे हैं लेकिन शरान मरीज़ नहीं होते, वो कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं होते वो, तो मसला मालूम करके फिर उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। एक बात तो ये है, दूसरी बात इस हदीस में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज़ पढ़ाई है, और सहाबे इकराम जब खड़े हुए थे तो हुजूर ने भी उनको बैठने का हुक्म दिया कि मैं भी बैठा हुआ हूँ तुम भी बैठो। तो इस मर्ज में जाहिर सी बात है कि सहाबा तो तंदुरुस्त हैं, हुजूर मरीज़ हैं, तो सहाबा तंदुरुस्त होते हुए बैठकर नमाज़ अदा की है। तो क्या आज मसला यही है कि अगर इमाम बैठ जाए तो मुख्तदी जो है वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे या बैठकर नमाज़ पढ़ेंगे? तो मसला तो ये है कि यानी जो इमाम मरीज़ है उसके लिए तो गुंजाइश है बैठने की, लेकिन मुख्तदियों के लिए खड़े होने की गुंजाइश नहीं, मुख्तदी के लिए बैठने की गुंजाइश नहीं है, तो तंदुरुस्त है, उसका क़याम साखित नहीं होगा। बकिया इस रिवायत का, इस रिवायत में तो यह है कि सहाबा इकराम भी अल्लाह के नबी के पीछे बैठकर नमाज़ अदा किए हैं, तो ख़ुद इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद के हवाले से यहाँ पर यह तफसील नकल कर दी है कि यह हदीस का हुक्म ख़त्म हो चुका है, यह हदीस मनसूख है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले यह हुक्म दिया था कि मैं भी बैठा हुआ हूँ तो तुम भी बैठो, लेकिन बाद में यह हुक्म दिया कि भाई मैं तो बैठा हूँ मर्ज़ की वजह से, तुम जो है ना खड़े हो जाओगे, तुम बैठकर नमाज़ नहीं अदा करोगे। तो दूसरी रिवायतों में इसकी तफसील मौजूद है। इसके बाद जो दूसरी रिवायत है उनमें सराहत के साथ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा इकराम को खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, उन्होंने खड़े होकर नमाज़ अदा की है। तकरीबन 13 दिन तक हुजूर जो है बीमार रहे, उसके बाद इंतकाल हुआ, उसमें से आखिर के तकरीबन 3 दिन तक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई थी। तो उस वक्त में कई चीज़ें साबित हुई जो ख़ास तौर पर कई मसाइल का हल निकल आता है अखीर की अय्याम की नमाज से। बहुत इख्तलाफी मसाइल चलते हैं ना, बहुत से क़िरत खल्फ़ल इमाम का मसला है, तो वहाँ भी उससे भी आप सल्लम के मरज वफ़ात के जो नमाज़ें गुजरी हैं उस मसले का हल भी निकल आता है, थोड़ा सा तहक़ीक़ी तौर पर गौर किया जाए। तो तीसरी बात जो इस हदीस में जहन में रखने की है वो ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल इमाम लियुतम बिही फ़ैदा रकअ फ़रकअऊ वैदा रफ़अ फ़रफ़अऊ वैदा सल्ला जालिसन फ़सल्लू जुलूसन। इमाम इख्तदा के लिए बनाया गया है, तो इमाम की इख्तदा करना है। मुख्तदियों के लिए हुक्म यह है कि इमाम की इख्तदा करें, इमाम जैसा करे वैसा करना है, रुकू करे तो रुकू करे, सजदा करे तो सजदा करे, रुकू से सर उठाए तो अपनी खुद ही सर उठाए, रुकू में जाए तो जाए। लेकिन इसमें एक बात ये जहन में रखने की है कि बाज़ मुख्तदी इमाम से सबकत कर जाते हैं, इमाम बन जाते हैं कि इमाम से पहले रुकू में सजदे में चले गए, इमाम आधा झुका ये पूरा रुकू में चले गए, इमाम अभी सजदा नहीं किया कि ये सजदे में चले गए। इस बात का लिहाज होना चाहिए, लिहाज करना चाहिए कि इमाम से सबकत ना होने पाए आमाल के अदा करने में, वो मकरूह तहरीमी है, यानी नमाज के अंदर ये मकरूह तहरीमी है कि अगर कोई शख्स जो है ना इमाम से सबकत कर जाए। बहुत से लोग सलाम में सबकत कर जाते हैं, सलाम में सबकत करते हैं, इमाम एक तरफ सलाम फेरा इनकी दो तरफ सलाम हो गई, इमाम का सलाम अब एक ही तरफ हो गया उनके दो तरफ हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, जायज़ नहीं है। तो इंतज़ार करना चाहिए, ऐसे जल्दी क्या है आपको, सेकंड 2 सेकंड में जो है ऐसी क्या जल्दी, यानी 2 सेकंड अगर आपने जल्दी अदा भी कर लिए तो कुछ होने वाला नहीं है उसमें। तो इसलिए इमाम का इंतज़ार करें, जब वो रुकू हो, क़ियाम हो, सजदा हो, कादा हो, तशहुद हो, जो भी हो, इमाम के करने के बाद जो है ख़ुद अदा करें उसको। तीसरी बात, यहाँ इस हदीस में ये मज़मून है कि इन्नल इमाम अलयुतम बिही फ़ैदा रकअ फ़रकअऊ वैदा रफ़अ फ़रफ़अऊ। मुस्लिम वगैरह में ये रिवायतें हैं, तो उनमें एक और इजाफा भी है जिसका जिक्र मुनासिब है यहाँ पर, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वइदा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम क़िरत करे तो तुम खामोश रहो। ये है, तो मतलब ये है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा कोई और सूरत नहीं पढ़नी चाहिए, असल में इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाना है। बाज़ हमारे साथी हैं ना कि सूरह फातिहा का अहतमाम करते हैं, तो ठीक है उनके पास अपने दलाइल मौजूद हैं पढ़ने के, हमारे पास अपने दलाइल मौजूद हैं, उनमें सराहत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वइदा क़रा फ़ानसितू, تو امام قرأت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. اصل میں ایسا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ امام جب قرأت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہے نماز میں, اللہ سے درخواست کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے, اللہ سے دعا کر رہا ہے. اور جب آپ کسی کے دربار میں جاتے ہیں ملاقات کے لیے, دعا کے لیے, بات کرنے کے لیے, تو ان کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے, پوری کی پوری مجلس جو ہے نا کسی بڑے آدمی سے بات کرنا شروع نہیں کر دیتی. تو امام جب ان کا مقتدا بنا ہوا ہے اور ان کا نمائندہ بنا ہوا ہے, ان کا ترجمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو ظاہر سی بات ہے کہ بات بھی تو وہی کرے گا, اللہ سے مناجات بھی تو وہی کرے گا, دعائیں بھی تو وہی مانگے گا. تو خیر یہ ایک حکمت ہے, وہ الگ ہے. لیکن حدیث میں صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب امام قرأت کرے تو خاموش ہو جاؤ. اور قرآن پاک کا بھی یہی حکم ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کہ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہ کر سنا جائے. یہ قرآن کا حکم ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مقتدی حضرات امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ کوئی اور سورت پڑھیں گے, وہ خاموش رہیں گے. بقیہ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو جواب یہ ہے کہ ہم کہاں سورہ فاتحہ کو ترک کر رہے ہیں, امام پڑھ رہا ہے نا, امام تو پڑھ رہا ہے, سورہ فاتحہ چھوڑ تو نہیں رہا. یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ چھوڑ کر امام آگے سے قرأت کرے. اس کے علاوہ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, دیگر محدثین, دیگر علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, یہ تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے کہ تنہا جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ کے ساتھ اور بھی پڑھنا ہے. اور ترمذی میں امام ترمذی نے یہ بات نقل کی حدیث نقل کرنے کے بعد. جن حدیثوں کی کتابوں سے ہم لوگ استدلال کر رہے ہوتے ہیں, محدثین جو حاشیے وہاں پر لکھتے ہیں, جو باتیں لکھتے ہیں, اس پر ہماری نظر نہیں پڑتی. یہ آگے پیچھے دیکھنے تو پتہ چل جائے گا. اچھا خیر یہ ایک الگ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے, حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اس میں یہ صراحت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا. اس کے بعد اس روایت میں اخیر میں یہ الفاظ موجود ہے کہ الا ان یکون وراء الامام, مگر یہ کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے ہو تو پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. تو ایسا بہت ساری دلیلیں ہیں, دلائل کا انبار ہوتا ہے. تو ان ساری روایت کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ مقتدی حضرات امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو خاموش رہیں گے, کوئی صورت نہیں کریں گے, قرات نہیں کریں گے. امام شافعی کے ہاں ٹھیک ہے, گنجائش ہے ان کے ہاں, یا دیگر امام کے ہاں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ حکم واجب کے درجے میں ہے, مقتدیوں کے لیے قرات کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا باب ہے, باب وضع الید علی المریض, مریض پر ہاتھ رکھنے کا یہ باب ہے. حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ ان اباہا قال تشکیت بمکہ تشکوا شدیدا, کہ میں جو ہے بہت سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا, بہت سخت بیمار ہو گیا مکے میں. فجاءنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی, اللہ کے نبی میرے پاس عیادت کے لیے آئے. فقلت, تو میں نے کہا, یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, انی اترک مالا, بے شک میں مال چھوڑ رہا ہوں. وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً, اور میں نہیں چھوڑ رہا ہوں مگر اپنی ایک بیٹی. فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ, تو میں اپنے مال کے دو تہائی حصوں کی وصیت کرتا ہوں اور ایک تہائی اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. قال اللہ, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں. قلت, وہ کہتے ہیں کہ پھر میں کہنے لگا کہ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ, اے اللہ کے رسول, میں نصف کی جو ہے نا وصیت کر دیتا ہوں اوروں کے لیے, اور آدھا جو ہے نا اس کے لیے رکھ دیتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے. قال اللہ, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں. پھر فرمایا, قلت, وہ کہنے لگے کہ فاوصی بالثلث واترك لها الثلثين, اے اللہ کے رسول, میں لوگوں کے لیے تو تہائی مال کی وصیت کر دوں گا اور اپنی بیٹی کے لیے دو تہائی چھوڑ دوں گا. قال الثلث, تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ثلث کی تو گنجائش ہے. پھر فرمایا کہ والثلث كثير, تہائی مال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ثم وضع يده على جبهته, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کی پیشانی پر رکھا. ثم مسح وجهي وبطني, پھر اللہ کے نبی نے میرے چہرے کو اور میرے چہرے پر اور میرے پیٹ پر اپنے ہاتھ کو پھیرا. ثم قال, پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا, اللہم اشفی سعدہ, اے اللہ سعد کو شفا عطا فرمائیے. واتمم له ہجرتہ, اور ان کی ہجرت کو مکمل فرمائیے. فما زلت اجد بردہ علی کبدی فیما یقال الی حتی الساعہ, تو فرماتے ہیں کہ میں برابر اپنے جگر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہوں, حتیٰ کہ ابھی تک بھی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو منشا ہے اس حدیث پاک سے, وہ یہ ہے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پاس جا کر مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا چاہیے. امام بخاری پوری حدیث سے بس یہی بتانا چاہتے ہیں, لیکن کئی باتیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ جب مریض کے پاس جائیں تو سرانے اس کے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھیں, اور اگر کوئی دعا درود کرنے والا ہے تو جہاں درد ہے وہاں پر جو ہے ہاتھ رکھ کر دعا درود کر سکتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر دم فرمایا کرتے تھے, تو ایک طریقہ وہ بھی ہے. इससे मरीज़ को तसल्ली होती है और ऐसे काम करना चाहिए। और तरगीब यही है हदीसों में कि मरीज़ के तसल्ली के काम आना चाहिए। यादत का मतलब यही है कि उसको तसल्ली हो जाए, उसको राहत मिले, उसको सुकून मिले। ये नहीं कि भाई यादत के लिए जाएँ तो मरीज़ को हर्ज हो जाए, उसको तकलीफ़ हो जाए। किस्सा एक मैंने सुनाया था ना एक मरतबा, बल्कि हज़रत के बयान में ही मिलता है वो, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात में, कि एक साहब बहरे हो गए थे और वो उनके अजीज़ों में कोई बीमार हो गए, यादत के लिए जाने का उन्होंने इरादा किया। तो अब जाहिर सी बात है कि उनके तो उसकी बात तो मरीज़ की बात तो इनको सुनने में आएगी नहीं, तो इसलिए पहले से प्लान उन्होंने तैयार किया कि मैं जाकर ये सवाल करूँगा, ये सवाल करूँगा, ये सवाल करूँगा, और जब वो इसके जवाब देगा तो फिर उसके जवाब में मैं ये कहूँगा उसको। तो अपने तौर पर पहले से सोच लिया कि मैं जाके पूछूंगा कि भाई क्या हाल है, तो वो कहेगा कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आमतौर पर आदमी तो यही कहता है, अल्लाह पाक की तारीफ़ करता है, बेहतर बेहतर हालत का जो है इकरार करता है। तो उसके जवाब में कहूँगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी हालत है, बस उसके ऊपर तारीफ़ करूँगा मैं। फिर दूसरा सवाल मैं ये करूँगा उससे कि क्या दवाई ले रहे हो, क्या खा रहे हो, तो वो कहेगा कि फ़लाँ दवाई ले रहा हूँ। तो उसके जवाब में मैं ये जवाब दूंगा कि भाई बड़ी अच्छी दवाई है माशाल्लाह, आप उसको इस्तेमाल करते रहें, उसमें बड़ा इफ़ाक़ा होगा, फ़ायदा होगा। फिर तीसरा सवाल ये करूँगा कि कहाँ इलाज करा रहे हो, कौन इलाज कर रहा है, तो वो जवाब देंगे कि फ़लाँ डॉक्टर के पास इलाज करा रहा हूँ। तो मैं उसके जवाब में ये कहूँगा, उसके बाद उसके पास पहुँच गए सवाल तैयार करके, तो जाकर उससे पूछा कि क्या हाल है, तो कहा कि अब अच्छा, जैसे ही वो मरीज़ ने देखा तो वो तो परेशान हो गया कि भाई ये तो मेरी सुनेगा नहीं अब, और जो भी कहेगा वो खुद सुना के जाएगा। तो उन्होंने बहरे ने पूछा कि क्या हाल है, तो मरीज़ ने कहा कि मर रहा हूँ बस, उससे मैं जिन जिंदा कर। तो उनका जवाब पहले से तैयार था, तो कहने लगे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाल। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर सवाल किया कि क्या दवाई खा रहे हो, तो उसको तो गुस्सा आ गया, तो उसने कहा कि जहर खा रहा हूँ, तो कहने लगे कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी दवाई है, आप उसको कंटिन्यू करें, आप उसका बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा इफ़ाक़ा होगा, अल्लाह पाक ने उसमें बड़ी शिफा रखी है। फिर उसके बाद तीसरा सवाल तय था उनका, तो तीसरा सवाल उन्होंने तय कर लिया, वो पूछ लिया कि भाई कहाँ इलाज करा रहे हो, तो वो झिल्लाते हुए उसने कहा कि भाई बस अब मलकुल मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उनका जवाब आ गया कि ज़बरदस्त तबीब है वो, आप उसके बाद अपना इलाज जो है ना करवाइए, बड़ा फ़ायदा होगा। तो खैर ये वाक़िया हज़रत थानवी जिक्र करके फरमाते हैं कि भाई मरीज़ के पास जाए तो उसको तसल्ली होना चाहिए, और बात ऐसी कहनी चाहिए कि जिससे उसको तसल्ली हो, राहत मिले, सुकून मिले, ये नहीं कि हम उस पर जाकर बोझ बन जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरीज़ के लिए दुआ भी करते थे, और कुछ चीज़ें बेहतर हों तो वो भी तजवीज़ फरमाया करते थे, और हाथ रखकर जो है दुआ फरमाया करते थे, कभी सर पर कभी दर्द की जगह पर हाथ फेर कर दुआ फरमाया करते थे। अच्छा यहाँ पर भी यही है, फरमाते हैं कि थुम्मा मसह वजही वबतनी, मेरे चेहरे पर मेरे पेट पर अल्लाह के नबी ने हाथ फेरा और मेरे लिए दुआ फरमाई। दुआ क्या फरमाई, एक तो शिफा की दुआ फरमाई, दूसरा ये कि वातमिम लहू हिजरतहू, हिजरत को मुकम्मल करने की दुआ फरमाई कि अल्लाह इनकी हिजरत को मुकम्मल फरमाइए। ये उस वक्त मक्के में थे और मक्के में हिजरत फ़र्ज़ हो गई थी, जैसे हमारे लिए नमाज़ फ़र्ज़ है वैसे उस ज़माने में हिजरत फ़र्ज़ है। मोमिन होने की अलामत समझी जाती थी ये बात कि लोग मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा आ जाएँ, हिजरत का हुक्म इस दर्जे का था। फ़तेह मक्का के बाद वह हुक्म ख़त्म हो गया, तो अल्लाह के नबी ने उनके हक़ में दुआ फरमाई कि अल्लाह इनकी हिजरत को मुकम्मल फरमाए, यानी ये फरीज़ा छूटने न पाए इनका। तो हुजूर की दुआ कबूल हुई, शहद याब हुए, फिर मदीना मुनव्वरा चले गए, हिजरत हो गई, फिर उसके बाद वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने उस वक्त जो हाथ फेरा था, तो इंतकाल के वक्त में फरमाते हैं कि जब मैं बीमार हुआ तो हुजूर के हाथ की ठंडक मेरे सीने में आज भी मुझे महसूस होती है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। बहुत सारे ऐसे मौजज़े हैं कि सहाबा इकराम हुजूर के बाद उन मौजज़ों को महसूस किया करते थे, उनमें से एक मौजज़ा ये भी है कि कई दिनों तक ठंडक बाकी रही, हम फेरें तो थोड़ी देर में आदमी को बेचैनी हो जाती है। हुजूर का हाथ तो बरकत वाला हाथ है, तो वो तो राहत ही का ज़रिया, सुकून का ज़रिया। इस हदीस में जो एक और मज़मून है वो ये है कि जब अल्लाह के नबी आ गए तो हज़रत साद कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मेरी एक बेटी है, तो मैं कुछ माल अपनी बेटी के लिए रखूँगा, बकिया माल अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करना चाहता हूँ। तो फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी मैं दो टू टू थर्ड जो है वो तो मैं दे दूंगा किसी और को, बेटी के लिए 1/3 रख दूंगा, मैं एक तिहाई बेटी के लिए रखूंगा और 2/3 जो है अल्लाह के रास्ते में सरका करने के लिए कह दूंगा, वसीयत कर दूंगा। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, 2/3 माल की वसीयत मत करो। तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह फिर मैं आधा माल वसीयत कर देता हूँ राह खुदा में खर्च करने के लिए और आधा माल अपनी बेटी के लिए छोड़ दूंगा। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ठीक है कि मैं 2/3 अपनी बेटी के लिए रखता हूँ और 1/3 अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए वसीयत कर दूंगा। तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, 1/3 माल तो खर्च कर सकते हो लेकिन 1/3 भी बहुत है। ये बात हुजूर ने इरशाद फरमाई। तो यहीं से एक बात जो मालूम हुई वो ये हुई कि आम तौर पर बहुत से लोग वसीयत कर देते हैं अपने माल की। ये हदीस मुबारक बताती है कि एक तिहाई माल से ज़ायद की वसीयत आप नहीं कर सकते गैरों के लिए। जब आदमी अपने बाद माल के मीरा माल के तकसीम करने की वसीयत कर रहा हो तो 1/3 माल की वसीयत कर सकता है। और हुजूर ने फरमाया कि ये भी बहुत ज़्यादा है, बेहतर यह है कि रिश्तेदारों के लिए छोड़कर मरे। वसीयत करने के बजाय अपने रिश्तेदारों के लिए छोड़े जिनका नान नफका आदमी के ऊपर ज़रूरी होता है। बीवी हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, ख़ानदान में ज़रूरतमंद हैं, तो उनके लिए छोड़े। तरतीबवार जो है ना माल तकसीम हो जाएगा वो। ये नहीं कि औरों के लिए सदका कर दिया, घर वाले मोहताज हो गए। तो हुजूर ने यहाँ पर यही बात इशारा फरमाई कि वसलुसु कसीर, उनके तिहाई माल भी बहुत होता है। और दूसरी रिवायतों में ये सराहत के साथ फरमाया कि तुम अपने वारिसिन के लिए माल छोड़ो, ये बेहतर है कि औरों के लिए सदका कर दो। तो इसलिए वसीयत अगर करना चाहे तो तिहाई तक ही वसीयत कर सकते हैं, तिहाई से कम की, तिहाई से ज़्यादा या 1/3 माल से ज़्यादा की वसीयत करने से वसीयत होगी भी नहीं। अगर किसी ने यह कह दिया कि मेरा आधा माल मदरसे में दे दिया जाए, आधा माल गरीबों में सदका कर दिया जाए, तो वो नाफिज ही नहीं होगी वसीयत उसकी, बल्कि 1/3 तक उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा, उसके बाद बाकी अमल वारिसों में तकसीम कर दिया जाएगा। यहाँ एक गलती ये भी करते हैं लोग, एक तो वसीयत में इस वसीयत की हद को मलहूज नहीं रखते, दूसरा यह है कि वारिसिन के लिए वसीयत करते हैं, भाई मेरे मरने के बाद मेरी बेटी के लिए ये होगा, बीवी के लिए ये होगा, बच्चों के लिए ये होगा, ये प्लॉट उनको दे दिया जाए, ये घर इनको दे दिया जाए, सोना बेटी को दे दिया जाए, वो चीज़ फलां को दे दी जाए, कार जो है ना बेटों को दे दी जाए, मिसाल के तौर पर तकसीम कर देते हैं। तो ये जहन में रहना चाहिए कि वारिसिन के लिए भी वसीयत जायज़ नहीं है। वारिसिन के लिए आप वसीयत नहीं कर सकते, बीवी के लिए आप तय नहीं कर सकते कि मेरी बीवी को मरने के बाद इतना हिस्सा दे दिया जाए, बेटियों को इतना हिस्सा दे दिया जाए, बेटे को इतना हिस्सा दे दिया जाए, और रिश्तेदारों को और जो वारिसिन उनको इतना हिस्सा दिया जाए, क्योंकि शरीयत उनकी रकम मुतय्यन करती है, शरीयत उनकी हद मुतय्यन करती है। तो इसलिए हमको इख्तियार नहीं है, हमको ये हक नहीं है कि अपने वारिसिन के लिए हम रकम तय करें, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए रकम तय किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तकसीम फरमा दी कुरान पाक में। तो इसलिए हमारे लिए एक तो तिहाई माल से ज़ायद की वसीयत करना ये सही नहीं है, दूसरा अपने वारिसिन के लिए वसीयत करना ये भी सही नहीं है। अगर कोई वसीयत करता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला वसीयत अली वारिसिन, इसकी वसीयत का एतबार भी नहीं होगा। अगर कोई वसीयत करेगा तो शरी एतबार से माल तकसीम होगा। फिर ये है, उसके बाद तीसरी रिवायत है हज़रत हारिस बिन सुवैद से, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नकल करते हैं, और ये रिवायत पहले आ चुकी है। उसका मज़मून ये है, फरमाते हैं कि दखल तो अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा युआकु फमसस्तुहु बियदी फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नका लतुआकु वाकन शदीदा। मैं अल्लाह के नबी के पास दाखिल हुआ तो आप बुखार में थे, मैंने अपने हाथ से आपको छुआ, मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह आपको तो बहुत सख्त बुखार है, तो हुजूर ने फरमाया कि अजल हाँ इन्नी उआकू कमा युआकू रजुलान मिनकुम, मुझे ऐसा बुखार है कि जैसा तुम में से दो आदमियों को बुखार होता है। फ़क़ुल्तु ज़ाका इन्ना लका अजरैन, फिर मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह इसकी वजह से तो आपको दोहरा अजर मिलेगा, तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ। फिर उसके बाद फरमाया मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अदन मरजुन फमा सिवाहु इल्ला हत्तल्लाहु लहु सय्यातिही कमा तहुत्तु शजरतु वरक़हा, किसी भी मुसलमान को कोई मर्ज या कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके सय्यात को उसके लिए मिटा देते हैं और उसके सय्यात को माफ़ कर देते हैं, ये नामे आमाल से गिरा देते हैं जैसा कि दरख्त से उसके पत्ते गिर जाते हैं। तो इसलिए जो बीमारियाँ होती हैं या आदमी के ऊपर जो हालात और परेशानियाँ आते हैं वो इंसान के लिए गुनाहों के मिटने, गुनाहों के धुलने का सबब होते हैं, या बाज़ दफ़ा अगर आदमी गुनाहों से धुला हुआ हो तो रफ़े दर्जात का सबब हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हर सूरत में ये मुसीबतें, परेशानियां आदमी के हक़ में बेहतर होती हैं। आदमी इसमें अल्लाह की इस मसलहत को, इस हिकमत को जो है ना समझे तो बीमारी और परेशानी बड़ी आसान हो जाती है फिर उसके लिए। बीमारी बीमारी नहीं होती, मुसीबत मुसीबत नहीं होती है। आगे जो रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की, इसी मज़मून की रिवायत है, और उससे आगे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, वो भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इयादत के लिए तशरीफ़, एक शख्स की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो इयादत में अल्लाह के नबी ने यह बात इरशाद फरमाई कि लाबा असतहूर इंशाअल्लाह, कि ये जो बीमारी है इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगी, इसको तंग मत समझो अपने ऊपर। लाबा असा का मतलब है कोई हर्ज नहीं है, यानी इसको तंगी, इसमें तंगी महसूस मत किया करो, ये तुम्हारे लिए गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगी, इससे तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो उस वक्त वो सहाबी कहने लगे कि बल ही अहम्मा तफूर वाला शेखिन कबीर इन कमा तुजीर उल कबूर, या रसूलुल्लाह ये तो बुखार है, गुनाहों से पाक करना, गुनाहों को धोना तो दूर की बात है, ये तो हमको कब्र तक पहुंचा रहा है। तो हुजूर ने जवाब में इरशाद फरमाया कि फ़नाम ईदन, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है वैसे ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि हुजूर की बात का एक माने में इनकार था, या अपनी बीमारी की वजह से वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए कि जो उनके तसल्ली का बाइस न बन सके, हुजूर का जवाब बन गए वो, तो उनके साथ ऐसा ही वाकया हुआ कि दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया। फिर हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि यह कब्र तक पहुंचाने वाला है, ठीक है फिर वैसे ही होगा, हम ये कह रहे हैं तुम्हारे लिए, इसको तुम्हारे अपने लिए रहमत समझो, गुनाहों के लिए, गुनाहों से कफारे का सबब समझो। तुम कह रहे हैं कि नहीं, कब्र तक पहुंचा रहा है, तो ठीक है, हमारी बात का अगर इकरार नहीं है, समझते नहीं हो, तो फिर जैसा तुम समझ रहे हो वैसे ही हो जाएगा। चुनांचे दूसरे दिन इंतकाल हो गया उनका। उसके बाद बाब है, बाबू इयादत المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار, यानी सवारी की हालत में चलते हुए, सवार होने की हालत में मरीज की इयादत करना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस से इसका भी इसको भी साबित करना चाहते हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होते हुए सहाबा इकराम की इयादत की है। वाकया बयान किया वो तफसील के साथ। हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गधे पर सवार हुए, और गधे पर भी सहाबा ने इतनी बारीक चीज़ों को नोट किया कि अला इकाफिन अला कतीफतिन फदकियतिन, उसके ऊपर जो है एक कपड़ा, यानी एक गद्दा बना हुआ है, गद्दे के ऊपर चादर बनी हुई है, चादर भी फलां जगह की बनी हुई है। इतना बारीकी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को और आपकी ज़िंदगी को वो लोग नोट किया करते थे, कौन सी चादर पर हुजूर बैठ रहे हैं। ये मोहब्बत की हद होती है, मोहब्बत की इंतहा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत की अलामत है ये कि हुजूर का अमल कौन सा है, किस कैफियत के साथ है, यानी आपकी ज़ाहरी ज़िंदगी को भी सहाबा इकराम नोट फरमाया करते थे। तो सवारी पर सवार हैं आप, तो फरमाते हैं कि हज़रत उसामा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे बिठाया। यऊद सआद बिन उबादा क़बला वक़ात बदरिन, ग़ज़वे बदर के वाक़े से पहले आप सआद बिन उबादा की यादत के लिए आप जा रहे थे। तो फसारा, तो हुजूर चले, हत्ता मर्रा बि मजलिसिन फ़ीही अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलूल, तो उस मौके पर आप एक ऐसी मजलिस से गुजरे जिसमें अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलूल था। वदालिक क़बला अन युस्लिमा अब्दुल्लाह, और ये हज़रत अब्दुल्लाह के इस्लाम लाने से पहले का वाक़िया है। तो फरमाते हैं कि वफ़िल मजलिस अखरातु मिनल मुशरिकीन वल मुशरिकीन आबदतुल औसानी वल यहूद वफ़िल मजलिस अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, इस मजलिस में मुसलमानों में से, मुशरिकीन में से, बुतों के पूजने वालों में से और यहूदियों में से कई लोग मौजूद थे, यानी सारे लोग मिक्स जो है ना इस मजलिस में बैठे हुए हैं, और उस मजलिस में अब्दुल्लाह इब्न रवाहा भी मौजूद थे। फलम्मा गशियतिल मजलिस अजाजतुद दाब्बा खम्मर अब्दुल्लाह इब्न उबय अनफहु बिरिदाईही, तो जब मजलिस में यानी उस खच्चर का गुबार उड़ा, तो अब्दुल्लाह इब्न उमई को ढांप लिया, तो अब्दुल्लाह इब्न उबई ने अपनी नाक को अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया गुबार की वजह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि ला तुखब्बिरु अलैना, कि हमारे पास ये गर्द गुबार मत उड़ाओ, बदतमीजी और बेबेहूदगी करना शुरू कर दिया उसने। तो फसल्लमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने सलाम किया, व वक़फ़ा और हुजूर ठहर गए, व नज़ला और नीचे उतरे, फदाअहुम इलल्लाह अल्लाह की तरफ उन लोगों को बुलाया, फ़करा अलैहिम अल-कुरान कुरान की अल्लाह के नबी ने तिलावत फरमाई। उस मौके पर अब्दुल्लाह बिन उबई ने उनसे कहा कि ऐ शख्स इन्नक ला अहसनु मिम्मा तकूल इन काना हक्कन फला तुदीना बिही फी मजालिसिना, कि आप जो कह रहे हैं मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूँ, एक मतलब इसका यह है, या दूसरा मतलब यह है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, अगर सही भी है तो वो सही बात नहीं है। फला तुदीना बिही फी मजालिसिना, ऐसी बातें कहकर हमारी मजालिस में जो है ना हमको तकलीफ मत दिया करो, दावत देने के लिए आ गए, तो वर्ज इला रहलिक अपने सवारी की तरफ वापस चले जाओ। फमन जा का फ़क्स साले, जो तुम्हारे पास आए उनको बयान करो, हमारे सामने बयान मत करो। तो क़ाल इब्न रवाहा, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, हज़रत रवाहा इब्न रवाहा कहने लगे कि बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल, इख़्शा ना बिही फ़ी मजालिसिना, आप हमारे पास आइए और हमारी मजालिस में आप तशरीफ़ लाइए, और आपका गर्द गुबार अगर उड़कर हमारे पास आता है तो कोई हमारे लिए मसला नहीं है, वइन्ना नुहिब्बु ज़ालिका, हम इससे मोहब्बत करते हैं। फस्तब्बल मुस्लिमून वल मुशरिकून वल यहूद हत्ता कादू यतसाबरून, तो उस वक्त मुसलमान है, मुशरिक है, यहूद है, ये आपस में जो है एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे, यानी थोड़ा सा बात तल्ख हो गई, तो उस यहूदी के जवाब में मुसलमानों ने भी जो है ना जवाब देना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनकी आवाज़ों को चुप करा रहे थे, हत्ता सकदू, यहाँ तक के आप खामोश हो गए। फिर उसके बाद हुआ ये कि आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले, सवार हो गए, सआद इब्न उबादा के पास आए, तो हुजूर ने फरमाया कि ऐ सआद, अबू हुबाब ने जो कहा है क्या तुमने सुना नहीं। हुजूर का मंशा अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल था जिसने आपके साथ बदतमीज़ी और बेहूदगी की थी, तो वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह उफ़ु अन्हु वस्फ़ा, उनको यानी उसको माफ़ दरगुजर करिए उससे, वो तो बदतमीज़ और बेहूदा है। लक़द आता कल्लाहु मा आता का, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो मकाम और जो इज़्ज़त अता फ़रमाई वो इज़्ज़त अता फ़रमाई है। वलक़द इज्तमा अहलु हाज़िहिल बहरति أن يتبجوه فيعصبوه فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيته। फरमाया कि असल में मसला ये है कि ये जो शख्स है, इसको अपनी मनसब की, अपनी जहाँ अपनी इज्जत और अपने इकराम का मसला जो है ये फ़िलहाल दरपेश है। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इज्जत दी, आपको सरदारी दी, आपको एक मकाम दिया, अब लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, मुतवज्जे हो रहे हैं, तो अब इसकी सरदारी ख़तरे में पड़ रही है। अब इसका जो सरदारी का ताज है वो ख़तरे में पड़ रहा है, उस तकलीफ़ की वजह से उसने आपके साथ बेहूदगी और बदतमीजी की है, उसके साथ ये वाकया पेश आया है। तो ये है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इससे यही बात इशार फरमाते हैं और आगे भी यही रिवायत है कि हुजूर ने यहाँ पर जो इयादत फरमाई थी हज़रत सारे बिन उबादा की, तो वो इयादत जो है वो सवार होते हुए अल्लाह के नबी ने की थी। इमाम बुखारी बताना ये चाहते हैं कि भाई आदमी जैसी अपनी सहूलत हो उसी अतबार से इयादत कर ले, तकल्लुफात करने की ज़रूरत नहीं है, ना सहाबा में तकल्लुफ था, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकल्लुफ था, चलती हुई सवारी है, जाते जाते अल्लाह के नबी ने बीमार की इयादत कर ली है। तो बहरहाल इयादत से मुतालिक ये कुछ आदाब हैं जो बयान किए गए हैं। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको सही इल्म सही अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। अलबत्त आगे कुछ मसाइल वो हैं जो ख़ास तौर पर जो अबवाब आ रहे हैं उनमें कुछ इख्तलाफी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर शिया हज़रात से मुतालिक। उनमें कुछ रिवायात वो हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इशारे जिसमें मिलते हैं, कुछ रिवायात वो हैं जिनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर इन रिवायात की रोशनी में शिया हज़रात जो है वो बड़े एतराज़ात करते हैं, उनकी ज़ात को मजरूह करने की कोशिश करते हैं। तो उस पस मंज़र में उनसे मुतालिक कुछ मसाइल आंदा मजालिस में मुस्तकिल तौर पर उसका मुज़ाकरा करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई। तो जो इख्तलाफी मसाइल ख़ास तौर पर होंगे सही हमको रहनुमाई के लिए, सही वाकिफियत के लिए, चार पांच मौजूआत जो बहुत ज़्यादा इख्तलाफी हैं और बहुत ज़्यादा जिन पर कीचड़ उछाला जाता है, उन रिवायत की रोशनी में उन पर गुफ्तगू करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ یہاں جمع ہونے کا قبول فرمائیے، کہنے سننے کا قبول فرمائیے، اس پر عمل ہمارے لیے آسان فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے والا بنائیے، آپ کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور حاجتوں کا پورا فرمائیے، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرمائیے۔ ہر ایک کی جو تمنا ہے دل میں چھپی ہوئی ہے، یا اللہ ہر ایک کی اس تمنا کو پورا فرمائیے، دونوں جہاں کی عزتوں سے سرفرازیوں سے سرفرازی فرمائیے، دونوں جہاں کی بلندیاں نصیب فرمائیے، دونوں جہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے، قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرمائیے، وہاں کی تکالیف سے حفاظت فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، پل صراط کا مرحلہ آسان فرمائیے، سوال و جواب کا مرحلہ آسان فرمائیے، نبی کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ حضور کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرمائیے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔